एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
Thank you.
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन खुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उससे प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम सब तेरे वचनों को सुनने जा रहे हैं। हमारे मनों को, हमारे हृदयों को खोल दे और हमें समझ शक्ति दे। पिता परमेश्वर, हमें तेरा पवित्र आत्मा दे। मैं मेरे श्रोताओं के लिए विशेषकर प्रार्थना करता हूँ, उन्हें तेरे वचन को सुनने और समझने के लिए मदद कर पिता, और उन्हें तेरा आत्मा के द्वारा तेरे राह में चलने के लिए मदद कर। मेरे संग हो पिता, तेरा पवित्र आत्मा दे ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ के द्वारा बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण करें, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है प्रधान रचियता। आइए हम परमेश्वर का वचन पढ़े जो मिलता है रोमियो की पत्री उसका 1:20 में। आइए हम इसे पढ़े। यहाँ लिखा है, क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर तो जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। प्यारो, प्रकृति में व्याप्त अद्भुत व्यवस्था और बनावट के प्रमाण इस बात का संकेत देते हैं कि कोई रचयिता अवश्य रहा होगा। बाइबल उस महान रचयिता की पहचान परमेश्वर के रूप में करती है। अगर आप किसी कमरे में जाएं और जमीन पर एक पेन पड़ा हुआ देखें, तो शायद आप उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे। लेकिन अगर आप 3 पेन को एक दूसरे से सटाकर रखे हुए देखें, तो आपको तुरंत लगेगा कि आपसे पहले भी कोई उस कमरे में रहा होगा और पेन से खेल रहा होगा। पेन यूं ही अपने आप एक पंक्ति में नहीं लग जाते। पेन का क्रम देखकर आपको लगेगा कि किसी बुद्धिमान व्यक्ति, शायद किसी बच्चे ने उन पेन को देखा होगा, उनके बारे में सोचा होगा, उन्हें एक पंक्ति में लगाने का विचार मन में आया होगा और फिर ऐसा ही किया होगा। एक और भी जटिल स्तर पर कई वैज्ञानिक प्रकृति में देखे गए डिजाइन के प्रमाणों पर आश्चर्यचकित हुए हैं। मानव आंख, पक्षी का पंख, जेलीफिश या बर्फ के टुकड़े की समरूपता, ये सभी एक महान डिजाइनर की गवाही देते हैं। आज हम बाइबल में परमेश्वर को महान डिजाइनर के रूप में वर्णित करने पर एक नजर डालेंगे और प्रकृति में उस डिजाइन के कुछ प्रमाणों पर भी गौर करेंगे। उत्पत्ति 1:26 जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समान बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। इस प्रश्न का उत्तर कैसे देता है कि क्या मनुष्य की उत्पत्ति बुद्धिमान ईश्वरीय इरादे से हुई या फिर अंध संयोग से हुआ? अपने मूल पाप मुक्त अदन के घर में आदम और हवा सभी चीजों पर उस महान रचनाकार की छाप देख सकते थे। जंगल के हर पत्ते पर, पहाड़ों के हर पत्थर पर, हर चमकते तारे पर, धरती, हवा और आकाश में ईश्वर का नाम लिखा था। सृष्टि का क्रम और सामंजस्य उन्हें असीम ज्ञान और शक्ति की बातें बताता था। वे हमेशा किसी ऐसे आकर्षण की खोज में रहते थे जो उनके हृदय को गहरे प्रेम से भर देता था और कृतज्ञता के नए भावों को जन्म देता था। उत्पत्ति 1:26 पर दोबारा गौर करें, जो इंसानों और धरती के बाकी सभी जीवों में क्या खास फर्क है? आपके हिसाब से इस फर्क से सबसे अहम नतीजे क्या निकलते हैं? भजन संहिता 8:5 आइए हम देखें। यहाँ पर दाऊद कहता है, परमेश्वर मनुष्य को बनाया, उस पर इतना दया कृपा किया, उन्हें स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम बनाया और उन्हें धरती के जीव जंतु जानवरों के ऊपर अधिकार दिया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय की विद्वान क्रिस्टर स्टेनडालहल निम्नलिखित अंतर्दृष्टि टिप्पणी प्रस्तुत करती हैं। वह कहती हैं, उस दुनिया की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि दुनिया का सुंदर स्वपन और जोखिम भरा था कि एक ऐसा प्राणी हो जो ईश्वर की सेवा पूर्ण स्वतंत्रता से करे, ना कि प्रकृति की आवश्यकता से। और मनुष्य ईश्वर के स्वरूप में बनाए गए थे, नर और नारी ईश्वर ने उन्हें रचा। ये हम पाते हैं मीनिंग्स किताब में, फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया फोर्ट्रेस प्रेस के 1984 में छपा है, प्रेस 234 में। ईश्वर का स्वप्न था कि हम, उसका इरादा था, उसका इच्छा था कि हम उससे मुक्त भाव से प्रेम करें। एक ऐसा कार्य जो प्रकृति की आवश्यकता से उत्पन्न पशुओं की मानव के प्रति भक्ति से कहीं बढ़कर था। उसका मनुष्य का स्वभाव ईश्वर की इच्छा के अनुरूप था। उसका मन दिव्य चीजों को समझने में सक्षम था। उसके भाव शुद्ध थे। उसकी तृष्णाएं और भावनाएं तर्क के नियंत्रण में थी। बहन एलन वाइट कहती है पैट्रियार्क्स एंड प्रोफेट्स में पृष्ठ 45 में, परमेश्वर ने आदम और हवा को जिन विशेष तरीकों से रचा, उनसे हमारी उत्पत्ति के बारे में क्या विचार सामने आते हैं। उत्पत्ति 2:7-21-25 देखें। क्रिस्टल अनहार्ट ने जो कहा उसके संबंध में 1 कुरिन्थियों 12:18 और भजन संहिता 104:24 पर विचार करें, यहाँ हम पाते हैं मेरा मस्तिष्क मानव निर्मित कंप्यूटर से कहीं बेहतर काम करता है। मेरा मस्तिष्क जीवन भर की जानकारी संग्रहित कर सकता है। मेरी आंखें मानव निर्मित कैमरे से कहीं बेहतर काम करती हैं। मेरे डिजाइनर ने स्वचालित विंडशील्ड वाइपर ब्लिंक और धूल साफ करने के लिए आंसू ग्रंथियों का आविष्कार किया। मैं डिजाइन किया गया हूं, आप भी डिजाइन किए गए हैं। मैं सृष्टि में क्यों विश्वास करता हूं, यह लिखा है इनसाइड 10 नवंबर 1990 में पृष्ठ 5 में, इस पत्रिका में इनसाइड में लिखा है। दाऊद कहता है कि आकाश परमेश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है, आकाशमंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है, भजन संहिता 91:1 में। और हम भजन संहिता 136:5 में भी गौर करें। एक प्रमुख बिंदु यह है कि सृष्टिकर्ता के रूप में परमेश्वर ने एक वास्तविकता स्थापित की है जो स्वयं से भिन्न है, कि वह इसमें सक्रिय है, भजन संहिता 104, और इसे संरक्षित करता है। परमेश्वर सृष्टि नहीं है, वह सृष्टि करता है। हंस जोआचिम क्रॉस भजन संहिता का धर्मशास्त्र, मिनियापोलिस मिनिसोटा फोर्ट्रेस प्रेस 1992 में छपा, पृष्ठ 36 का। इसका अर्थ यह है कि सूर्य चंद्रमा और तारे परमेश्वर की महिमा की घोषणा करते हैं, ना कि अपनी दिव्यता की, जैसा कि इज़राइल के पड़ोसियों ने गलती से कल्पना की होगी। अय्यूब 38 उसका 32-33 में स्वर के नियम हम पाते हैं, यह क्या है। एलन वाइट लिखती है अनंत शक्ति का हाथ इस ग्रह का मार्गदर्शन करने के लिए निरंतर कार्यरत है। यह ईश्वर की शक्ति है जो क्षण भर के लिए प्रयोग की जाती है और इसे अपने घूर्णन में स्थिर रखती है। यह किसी तंत्र के परिणाम स्वरूप नहीं है जो एक बार गतिमान हो जाने पर अपना कार्य जारी रखता है, जिससे नाड़ी धड़कती है और श्वास के पीछे चलती है। ईश्वर में हम जीवित हैं, गतिशील हैं और हमारा अस्तित्व है। यद्यपि प्रभु ने सृजन का अपना कार्य बंद कर दिया है, फिर भी वह निरंतर उन वस्तुओं को बनाए रखने और अपने सेवकों के रूप में उपयोग करने में कार्यरत हैं जिन्हें उसने बनाया है। एसडीए बाइबल कमेंट्री खंड 6 का पृष्ठ 1062 में हम यह बात पाते हैं। किस बात ने दाऊद को यह कहने पर विवश किया, मनुष्य क्या है, भजन संहिता 8 का 4 में वह लिखता है, भजन संहिता 8 का 4 मानव जाति की सृष्टि से संबंधित भजन संहिता के अन्य सभी अंशों के लिए स्वर निर्धारित करता है और उनकी व्याख्या इसी प्रकाश में की जानी चाहिए। संदर्भ सुझाता है कि मनुष्य क्या है, शब्दों के बाद वास्तव में एक विस्मय दीपबोधक चिन्ह लगाया जाना चाहिए, ना कि प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मय या दीपबोधक चिन्ह लगाना चाहिए जो असीम विस्मय को व्यक्त करता है। स्वर्ग और पृथ्वी पर सृष्टि परमेश्वर की महानता और प्रताप की गवाही देती है। इसके माध्यम से भजनकार को अपनी मानवता के मूल्य का एहसास होता है। दाऊद ने लिखा कि हम भयानक और अद्भुत रीति से रचे गए हैं, यह भजन संहिता 139 का 14 में लिखा है। यहूना 5 का 17 हम में और प्रकृति में प्रदर्शित सक्रिय ऊर्जा के अंतिम स्रोत परमेश्वर और यीशु मसीह की ओर संकेत करता है। बाइबल कहती है नीति वचन 6:6-8 में कि चींटी के पास जाओ और उससे सीखो। हम चींटी से क्या सीख सकते हैं? प्यारो, परमेश्वर ने चींटी को बनाया है। वे बहुत छोटे हैं लेकिन वह बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। वे लोग एक साथ काम करते हैं, बिना किसी के कहे वे लोग काम करते हैं। परमेश्वर हमें कीटों के खास हिस्से पर नजर रखने का निर्देश क्यों देता है? विलियम बीबे गुआया ने जंगल की रेत में एक गढ़े में काम कर रही सेना की चींटी ब्रिगेड का एक रंगीन वर्णन देते हैं। वह कहते हैं, इस झुंड में संभावित कॉर्डरॉय, रस्सी के पुल, सहारा रेलिंग, जालियां, पर्दे, भराव, सीढ़ियां और इन प्रतीत अवैध घटनाओं पर सफलतापूर्वक चढ़ने के लिए अन्य अनाम सहायक उपकरण शामिल थे। अगर कठोर रेत की कोई परत दिखाई देती जिस पर कोई निशान नहीं बनता तो चींटियों की एक कतार वहां फैल जाती और हर चींटी अपने जबड़ों और पैरों से खुद को मजबूती से जमा लेती। उसी क्षण से उसकी ज्वरग्रस्त गतिविधि उससे दूर हो गई। वह एक स्थायी वस्तु बन गया, एक खाई पर लहराते पुल की एक इकाई, एक बीम, एक ठोस तख्ता जिस पर उसके साथी सैकड़ों की संख्या में कुछ खाली कुछ भारी बोझ से लदे चलते थे। अगर अचानक चढ़ाई करनी होती तो एक चींटी दूसरों से जुड़कर एक लटकती हुई सीढ़ी बनाती जिस पर खंभे चढ़ते आंशिक रूप से रेतीली दीवार से टिके हुए। कीड़ों में इस तरह के अद्भुत बुद्धिमान व्यवहार का मूल स्रोत केवल एक प्रेमपूर्ण सृष्टिकर्ता परमेश्वर के मन में ही पाया जा सकता है, जिसकी बुद्धि असीम है और जिसकी कोमल दया उसकी सारी सृष्टि पर है। भजन संहिता 145 का 9 कहता है, शायद इसी तरह के उदाहरणों ने दाऊद को यह कहने के लिए प्रेरित किया होगा कि जितने प्राण हैं वे सब यहोवा की स्तुति करें, भजन संहिता 150 का 6। हालांकि हम मानते हैं कि सभी अच्छी चीजें हमारे प्रेमपूर्ण परमेश्वर से आती हैं, फिर भी इस दुनिया में बुराई मौजूद है। हम उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं भाइयों, जब परमेश्वर सभी बुराइयों का नाश करेगा और सभी चीजों को पूर्णता प्रदान करेगा। परमेश्वर पंखों वाले संसार का हवाला देकर गहन आत्मिक शिक्षाएं हमें सिखाता है। यिर्मयाह 8 का 7 में हम यह पा सकते हैं, आकाश में लगलग भी अपने नियत समयों को जानता है और पंडुकी सुपा बेनी और सारस भी अपने आने का समय रखते हैं। अपनी पुस्तक गॉड्स वंडरफुल वर्ल्ड में जॉर्ज वेंडमैन और आशा थॉरेसन पक्षियों की उड़ान के चमत्कार पर चर्चा करते हैं। क्योंकि पक्षियों की हड्डियां खोखली होती हैं, इसलिए लगभग 7 फुट के पंखों वाले मैन और मैनोवार की पंखों की हड्डियों का वजन केवल 4 या 5 औंस होता है। कुछ पक्षियों में पंखों को संचालित करने वाली वक्षीय मांसपेशियां कुल शरीर भार का 30% तक होती हैं, जबकि मनुष्यों में वक्षीय मांसपेशियां शरीर भार के 1% से भी कम होती हैं। पक्षियों की वक्षीय मांसपेशियों को तीव्र ऊर्जा प्रदान की जा सकती है, क्योंकि उनका रक्तचाप मनुष्यों की तुलना में अधिक होता है और उनके रक्त शर्करा की सांद्रता स्तनधारियों की तुलना में लगभग 2 गुनी होती है। गोल्डन फ्लावर इतने कुशल उड़ान भरने वाले होते हैं कि वे लैब्राडोर से लेकर दक्षिण अमेरिका के मध्य तक समुद्र के पार हजारों मील की यात्रा कर सकते हैं और केवल लगभग 2 औंस वजन कम कर सकते हैं। ऐसा करने पर एक हवाई जहाज को 1 गैलन ईंधन में 160 मील की दूरी तय करनी होगी, जबकि अभी यह 20 मील प्रति गैलन की दूरी तय करता है। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर एक उड़ान पंख बेहद जटिल होता है। इसमें नसें, कांटे, कटीले तार, फ्लेंज और छोटे छोटे हुक होते हैं। ये सभी मिलकर एक जिपर बनाते हैं। जब यह जिप खोल दी जाती है तो इसे फिर से संवार कर जिप किया जा सकता है। प्यारो, ये अद्भुत प्राकृतिक वास्तविकताएं दर्शाती हैं कि ईश्वर की रचनाएं मनुष्यों द्वारा आविष्कार की गई किसी भी चीज से कहीं बेहतर हैं। कई लोग सिखाते हैं कि पदार्थ में प्राण शक्ति होती है। पदार्थ को कुछ गुण प्रदान किए जाते हैं और फिर उसे अपनी अंतर्निहित ऊर्जा के माध्यम से कार्य करने के लिए छोड़ दिया जाता है और प्रकृति के संचालन निश्चित नियमों के अनुरूप होते हैं, जिसमें स्वयं ईश्वर हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यह मिथ्या विज्ञान है और ईश्वर के वचन द्वारा समर्थित नहीं है। प्रकृति अपने सृष्टिकर्ता की दास है। ईश्वर अपने नियमों को रद्द नहीं करता है या उनके विपरीत कार्य नहीं करता है, बल्कि यह निरंतर उन्हें अपने उपकरणों के रूप में उपयोग करता रहता है। प्रकृति एक बुद्धिमता, एक उपस्थिति, एक सक्रिय ऊर्जा की गवाही देती है जो उसके नियमों के भीतर और उसके माध्यम से कार्य करती है। प्रकृति में पिता और पुत्र का निरंतर कार्य होता है। मसीह कहते हैं, मेरा पिता अब तक कार्य करता है और मैं भी कार्य करता हूँ। यह लिखा है यूहन्ना 5:17 में। प्यारो, प्रकृति में हमारे चारों ओर जटिल रचना के प्रमाण मौजूद हैं। ये रचनाएं एक महान रचनाकार परमेश्वर की ओर इशारा करती हैं। यह जानकर सुकून मिलता है कि जिस परमेश्वर ने हमें रचा है वह हमें पुनर्स्थापित करना भी जानता है। इसलिए प्यारो, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम परमेश्वर का महिमा करें, क्योंकि वह महान है। वह हमें बनाया है, वह हमारा सृष्टि करता है, हमें अद्भुत तौर से बनाया है और हमारा देखभाल भी करता है। वह हमें पुनर्स्थापित करना भी जानता है। प्यारो, हम उसे धन्यवाद दें, हम उस पर भरोसा रखें। आइए हम उसका गुणानुवाद करें इस दुनिया में उसके प्रकृति को देखकर, क्योंकि वह हमें अद्भुत रीति से, विचित्र तौर से बनाया है। वह महान है। आइए हम उसके अद्भुत कामों को देखकर उसकी स्तुति करें और उसमें भरोसा करें और उसके पीछे चलें। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान, सशक्तिमान, दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं। हम आज के वचन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। तू हमारा सृष्टि करता है। तू हमें दिखाया है कि सृष्टि में बहुत सारे अद्भुत चीजें हैं जो हमें विचित्र लगते हैं, लेकिन उसको बनाने वाला तू ही है। हम तुझ पर भरोसा कर सकते हैं और हम जान सकते हैं कि तू ही हमें आगे चलाएगा। पिता परमेश्वर, हमें तेरे वचनों के पीछे चलने के लिए मदद कर और हमें तुझ पर भरोसा करके हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए मदद कर। हम सबों को तू बहुत आय से आशीष दे और तेरे प्रेम में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुना ग्रहण कर, आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800-833-2231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudaveentist.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़े, तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।